उसके उनके जाने के बाद औरत थोड़ा चैतन्य हुई। केंचुए साले, मरकटवा भुनभुनाया। औरत ने अपने पैर फैलाए, उसका हाथ अपने पेट पर गया। उसे कैसा कैसा लगने लगा, वह कुछ डर गई। उसे लगा छातियों के नीचे अचानक उसका पेट खाली होकर ढलक गया है। वह हड़बड़ा गई, उसका बच्चा कहाँ खो गया। उसने अपनी उंगलियों से इधर उधर टटोलना शुरू किया। उसे लगा उसका पूरा पेट सरक कर नीचे उसकी जांघों के बीच उतर आया है। उसने उधर हाथ फिराया, एक पत्थर और सन्नाटा, कहीं कोई हरकत नहीं, कोई हिलडुल नहीं। क्या वह सो गया है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उठो बाहर चलते हैं, मरकटवा ने औरत से कहा। हमसे उठा नहीं जाएगा, औरत की आवाज में जैसे सदियों की थकान थी। हमारा हाथ पकड़ लो ना, मरकटवा ने कहा। हाथ पकड़ के भी नहीं उठ सकते, औरत ने कहा। तब हमसे चला नहीं जाएगा, उसने आर्त स्वर में कहा। क्या कहती हो, बाबू वेला मचा देंगे, मरकटवा चिंतित हो गया। तो क्या करें। अच्छा हम उठाते हैं, मरकटवा ने उसके पीछे से बगलों में हाथ डाल के खड़ा कर दिया। कोशिश करो, हाँ चलो, चलती चलो, उसने मजबूती से थामे हुए था। पेट में लहर उठ रही है, औरत ने चलते चलते कराहा। उसका सिर मरकटवा के कंधे पर लटक गया। लहर क्या, मरकटवा ने पूछा। पता नहीं कैसा कैसा हो रहा है, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा, औरत ने टूटती आवाज में कहा। वे दोनों अन्हरिया से निकलकर जब बनकटे में घुसे तो काफी अंधेरा हो चुका था। उन्होंने इन तीनों की आवाजें सुनी। वे बरगद के नीचे बैठे हुए थे। जब वे धौंका लेते तो उनके होठों से लगी बीड़ी के ठूंठ अंधेरे में नन्हे लाल कंचों की तरह चमक उठते। उन दोनों की आहट पाकर कोटबाजों ने में से एक ने अचानक चोरबत्ती की रोशनी फेंकी। मरकटवा की आंखें चौधिया गई और उसने अपनी गर्दन पीछे कर ली। तनी ई लीला देखो, ई बनकटे में बायोस्कोप कहाँ से आ गया, कोटबाज ने चोरबत्ती जलाए जलाए कहा। शिव महतो ने देखा और मामले की नजाकत समझ गए। ई तो नव मन की धोबिन लिए चला आ रहा है, दूसरे कोटबाज ने पारखी निगाहों से देखते हुए कहा। अबे तब है, पहला कोटबाज बोला। लाइट मत मारिए और जौन बात करनी हो बाबू से करिए आप लोग, मरकटवा ने चिढ़ कर कहा। लेकिन कोटबाज ने उसकी बात पर कान नहीं दिया, वह चोरबत्ती और ऊपर नीचे चमकाने लगा। बंद करो लाइट, मरकटवा ने कड़कती आवाज में कहा। अंग्रेजी छांटता है, दूसरे कोटबाज ने व्यंग से कहा। बाबू साहेब अभी लड़का है, सिंह महतो ने मामले को ठंडा करने की गरज से कहा। लड़का है कि पूरा बैसाख नंदन, दूसरे कोटबाज ने मरकटवा की अकड़ में जवाब में कहा। हम गहकी हैं बे, माल देख रहे हैं, पहले कोटबाज ने चोरबत्ती जलाए रखी। हट, हमको सौदा परखने दे, दूसरा कोटबाज उन दोनों के पास गया और उसने मरकटवा को धक्का देकर परे ठेल दिया। उसका हटना था कि औरत लद्द से जमीन पर गिर पड़ी, जैसे घोंसले में सोई चिड़िया कभी कभी अचानक हवा के छोंके से गिर कर छितरा जाती है। उसके मुंह से एक लंबी सी चीख निकल गई। पहले कोटबाज ने बत्ती बुझा दी, लेकिन तभी पता चला कि मरकटवा और उस दूसरे कोटबाज में जुझारू बजनी अंधेरे में चल रही है। मामला संगीन जानकर शिव महतो दौड़ा और उसने दोनों को छुड़ा कर अलगिया दिया। मार डालेंगे साले, चाहे फांसी चढ़ जाए, मरकटवा छटक रहा था। शिव महतो ने लंबी सी गाली दी तो वह परे हटा। होंगे अपने घर के जमींदार कुकर्मी कुत्ते साले, मरकटवा ने अंधेरे में कहा। और तेरा बाप क्या है, पुण्यात्मा ऋषि मुनि, दूसरा कोटबाज बोला। बाप का बाप साले साला जाने, बाप का बाप साला जाने, बाकी हमसे एंडबाजी दिखाई तो लेंदी पोटी निकाल के बाहर कर देंगे, मरकटवा चिल्लाया। ये महतो सौदा सुलूफ के न्योता दिए रहो की इज्जत उतारे खातिर, दूसरा कोटबाज बोला। हमके माफी दे दें बाबू साहेब, शिव महतो ने कहा। हराम जादे गाय गोरू बनाए हैं, मरकटवा भुनभुनाया। गाय गोरु नहीं है तो काहे जंगल ठेकाए हो, घरे ले जाके आरती उतारो, पहले कोटबाज ने घूंघियाते हुए कहा। उतारेंगे वह भी करेंगे, बखत आने दो, मरकटवा बोल गया। ई कुबंश कहवां से पैदा हो गया, भगवान शिव महतो अंधेरे में माथा पकड़ के बैठ गया। चलो जी, बेकार, हैरान हुए दोनों कोटबाज, भुनभुनाते हुए बनकटे से बाहर हो गए। उनके बाहर होते ही शिव महतो उछला और अपने बेटे को तड़ से एक तबड़ाक जड़ दिया। हरामी के पिल्ले, जवानी बड़ी फूंककार रही है, उसने कहा। मरकटवा अपना गाल और पंखुरा सहलाता हुआ चुप रहा। गहरी गांकी फेर दिया है। सिंह महतो बोला, कौन आएगा ए, लाइट से चोट लगती है। अफसर मिनिस्टर बने हैं इसी बनकटे में खेखर सियार के साथ, तब करना है कि बेंच बांच के घर चलना है। और ऊपर से सिंकड़ खोल दिया, क्यों खोल दिया, अन्हारे में कतों लुका जाती, धीरे से खिसक जाती तो शिव बीड़ी जलाने लगा। तीली का उजाला हुआ तो मरकटवा ने देखा कि औरत फिर वैसे मुड़ी गुड़ी बैठी है। थोड़ा थोड़ा रुककर तीन चार बारे कोड़बाज आए, कभी दो दो कभी तीन तीन। शिव महतो हर बार औरत को आर्डर देता तो वह बरोह पकड़ कर खड़ी हो जाती। वे चोरबत्ती जलाते या कभी कभी माचिस की तीली, फिर वे उसको घुरियाते। एक ने हल्के से उसके कुल्हों पर हाथ से ठोका और एक ने झटके से उसका आंचल माथे से खींचकर हटा दिया। ओफ क्या करते हो शिव, उसने कहा। क्या हुआ गिरी बाबा, शिव ने कहा। कुछ दिन थम जाते, उसने कहा। अभी तो ये किसी काम की नहीं है, दूसरे ने कहा। फिर वे चले गए। आधी रात के बाद साथे साथ तीन कोड़बाज आए। शिव महतो ने औरत को आवाज दी कि वह ठड़ी हो जाए। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। शिव ने चोरबत्ती जलाई और चिड़चिड़ाया हुआ उठा। काने में करू तेल डाल रखा है का, उसने औरत का घूंघट खींच दिया। औरत एकदम बेबस उसे आंखें उठाकर देखने लगी। ओहो, शिव वहां से हट गया। ठड़ी नहीं हो सकती, उसने कोड़बाजों से कहा। कोई बात नहीं महतो, एक कोड़बाज ने कहा, हमने समझ लिया, माल अभी फंसा है, आप लोग जाएं, शिव लाचार होकर बोला। नहीं, सौदा हो जाए महतो, कोड़बाज बोला। कैसे हो जाए, शिव महतो की समझ में नहीं आया। कैसे क्या, बैना बट्टा हो जाए, जब इस लायक होगी ले जाएंगे। एक ठाकुर साहेब का घर बसाना है, माल परफेक्ट है, कोड़बाज के दूसरे साथी ने कहा। बाकी ई चेटा पेटा नहीं चलेगा, उसका ठिकाना कीजिए, कोड़बाज के तीसरे साथी ने कहा। तो दाम, शिव महतो भरमा हुआ बोल रहा था। दाम आप ही बोलिए ना, आप तो लेड़ी बाबा के चेला हैं, कोड़बाज बोला। देखिए बड़ा खर्चा पड़ा है, शिव महतो अपने को तौल रहा था कि क्या बोले। अरे बोलिए तो, उसने कहा, 6000 से कम नहीं पोसाएगा, शिव ने डरते डरते कहा। कुछ नीचे उतरिए कि नहीं उतरेंगे, कोड़बाज ने कहा। ई तो आपसी मसहलत की बात है, शिव खुश हो गया। 5000 पर टूटिए, ई लीजिए बैना, कोड़बाज ने बिना गिने नोटों की एक गड्डी शिव के हाथ में थमा दी। कितना है, शिव महतो ने नोटों पर लाइट फेंकी। 1000, कोड़बाज ने कहा। बाकी खाली कराना आपका काम, दूसरे कोड़बाज ने कहा। वो हम पर छोड़ दीजिए, शिव महतो ने रकम टिटियाते हुए कहा। जितनी जल्दी हो, तीसरा कोड़बाज बोला। फिट, शिव ने हामी भरी। ठाकुर साहब के तो भाग देख गए, एक कोड़बाज ने दूसरे को ठुनकियाते हुए कहा। का मतलब, शिव महतो ने पूछा। अरे देखिएगा खाली होने के बाद क्या खेलती है, उसने जवाब दिया। कहां से ऊपर आए महतो, दूसरे कोड़बाज ने पूछा। तराई का माल है, शिव महतो बोला। तबे इतरा तर है, कोड़बाज ने कहा। बाबू, अंधेरे में मरकटवा का गुरु गंभीर स्वर सुनाई पड़ा। मजे का नफा दे गई, कोड़बाजों के जाने के बाद शिव महतो ने सौदा पट जाने की खुशी अपने बेटे से बांटनी चाहिए। नफा धरा रह जाएगा यदि टे बोल गई तो, मरकटवा ने बाप से कहा। का मतलब, शिव महतो की भौहें तन गई। देखो उधर, चोरबत्ती बार के, मरकटवा ने औरत की ओर इशारा किया। शिव ने चोरबत्ती जलाई, दोनों लपक कर औरत के कभी बेजो सूखे पत्तों के ढेर पर चित्त पड़ी छटपटा रही थी। उसका सिर कभी एक ओर पलटता, कभी दूसरी ओर। चीख रोकने के लिए उसने होठों को भींच रखा था। रोशनी की चकाचौंध हुई तो उसने एक हाथ के इशारे से बत्ती बुझाने के लिए कहा। फिर अंततः उसका धीरज छूट गया। वह इतने जोर से चीखी कि लगा जैसे घने वन में किसी ने की नरेटी रेती जा रही हो। नरेटी गर्दन। प्रसव ठीक से होना चाहिए, कहीं चल बसी तो, शिव महतो एकदम बेचैन हो उठा। रात के तीसरे पहर का चांद कटा हुआ फीका फीका ऊपर उठ रहा था। चारों ओर एक दुधिया पनीली उजास बिखर गई। उस ठंडी रोशनी में छटपटाती हुई कराहती हुई औरत से थोड़ा परे खिसक कर बाप बेटे चुक्का मुक्का बैठ गए। ऐसी दफसट में तो कभी नहीं फंसे थे, शिव महतो ने कछार की ओर ताकते हुए कहा। कुछ करो बाबू, मरकटवा ने कहा। क्या करें, अब तो तुम्हारी अम्मा को भी बुलाने का वक्त नहीं रहा, शिव महतो ने मुड़कर औरत को देखते हुए कहा। रामपुरी मेरी बगल में है, मरकटवा ने चाकू निकालकर बाप की ओर बढ़ाते हुए कहा। रामपुरी क्या होगा, शिव महतो बोला। नार क्या होती है बाबू, मरकटवा ने पूछा। शिव महतो समझ गया, वह उस आह कराह से अलग अपने बेटे को ऐसे देख रहा था जैसे कभी देखा ही न हो। तभी कुछ हुडर हुडर की आवाज आई। दोनों ने पलट कर देखा। चिंग महतो ने चोरबत्ती जलाई। चोरबत्ती की रोशनी में चार लाल लाल गोलियां चमक उठी। बिकवे हैं, शिव महतो ने कहा। हो हो, मरकटवा ने लाठी पटकी। जच्चा बच्चा की महक पा लेते हैं साले, शिव महतो डरा हुआ बोल रहा था। उसके हिसाब से यह अशुभ था। मरकटवा ने लाठी लेकर दौड़ाया तो दोनों बिगवे नदी के कछार की ओर भागे। हो हो करता हुआ मरकटवा भी उनके पीछे कांट कूस फलांगता हुआ कछार में उतर गया। शिव महतो ने चोरबत्ती जलाकर जमीन पर रख दिया और इंतजार करने लगा। बीच बीच में औरत चित्कार करती तो वह चौंक जाता। उसे डर लगने लगता जैसे वह तबीश में फंस गया हो और कहीं भी निकल भागने का रास्ता न हो। वह बार बार गर्दन मोड़कर उधर देखता, फिर निगाहें हटा लेता। हे बाबा बलेश्वरनाथ, दया करी तनी दया, उसने मन ही मन कहा और आसमान की ओर देखा। वहां सितारे इस तरह भरे हुए थे जैसे किसी ने अगहनिया सफेद ज्वार का बिया छींट दिया हो। शिव महतो सोचने लगा, पतोह बना के ही लाए थे तो खाली हो जाने पर काहे को बेचें? ठाकुर का ससुर का घर बसाने से पहले अपने लदभेसरा का ही घर क्यों न बसा दें? दिया लेके खोजा है, कहां कहां मारे मारे फिरे, कितना कच्चा खाए। उदासी जी ने जो पाप करवाया सो अलग, इसी की खातिर न कि हमारा वंश बरखा चल जाए, केहू पानी देवे वाला रहे। ठीक है, बसीर खाव का बैना लौटा देंगे, टेढ़ा सीधा बोलेंगे तो उसका इलाज हो जाएगा। यही सब सोचते हुए उसने मुड़ी घुमाकर औरत की ओर देखा। वह बड़ी देर से चीख चिल्ला नहीं रही थी। जब भी वह इस तरह शांत पड़ जाती तो उसे लगता कि अब बूझ गई, लेकिन तभी वह गर्दन झटकती हुई जोर से चीत्कार कर उठती। उसे मरकटवा पर गुस्सा चढ़ने लगा। उसे बिगवा खदेड़ने के खेल में मजा आ रहा होगा, अब लंके ठेका के दम लेगा, वह भुनभुनाया। तभी बनकटे के किसी एक कोने से नदी के कछार से एक सियार के हुआ की आवाज उठी, फिर जरा रुक कर किसी दूसरे कोने से, फिर बनकटे के भीतर उसके आसपास झाड़ियों के अंधेरे में नीचे अनहरिया में हर ओर हुआ हुआ फिर हुआ हुआ जल्दी जल्दी, और पूरा जंगल उस हुआ से गूंज उठा। उसे लगा उसके आसपास अगल बगल उसे घेरे हुए सब और सियार रे लुका कर बैठे हैं। यह भोर की हुआ से शिव महतो बुदबुदाया और चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। उसने अपनी लाठी तीन चार बार जमीन पर पटकी और फिर चोरबत्ती लिए हुए औरत के नजदीक खिसकाया। तभी औरत ने भयावह चीत्कार किया। शिव महतो डर गया कि शायद खेखर सियार न घिसिया रहे हों। उसने लाइट की रोशनी औरत को फेंकी और शर्म से उसने मुंह दूसरी ओर फेर लिया। बच्चा अवतार ले रहा है था। उसने जेब से छुरी निकाली और उसकी धार पर उंगली फिराई। फिर उसने पगड़ी खोली और उसमें से कपड़े का एक बड़ा सा टुकड़ा फाड़ा। टुकड़ा अंगोछे के छोर तक फटता चला गया। कोई बात नहीं, इसे भी खर्चे में डाल लेंगे, वह बुदबुदाया। उसने दोहर जमीन पर डाली और धोती खुटिया ली। तभी बनकटा एक नवजात शिशु के कहां कहां की आवाज से गूंज उठा। अब लाज शर्म का बखत नहीं है, शिव महतो ने सोचा। उसने लपक कर औरत की छाती पर कान लगाया। छाती धड़क रही थी लेकिन औरत एकदम काठ की तरह अकड़ी हुई, जैसे जियतार लकड़ी सूखने पर ऐंठ गई हो। वह टेढ़ी मेढ़ी अस्त व्यस्त निर्जीव सी पड़ी थी। कोई बात नहीं, वह बेहोश है, शिव महतो ने अपनी दोहर उस पर फेंक दी। फिर उसने खट से छुरी खोली और नार छिनका कर उसे लत्ते से बांध दिया। फिर उसने बच्चे को अंगोछे में लपेट कर गोदी में उठाया। चांदनी की उस नरम उजास में शिष्य का उज्जर उज्जर मुख जैसे आटे का लौंदा हो। उस जंगल उस रात उस सन्नाटे में शिव महतो एक तक निरखता रहा। लम्हेरा जामे गए ना, आपन बुंद से होते तो हम निहाल हो जाते, शिव महतो ने बच्चे से बतियाते हुए कहा। कूदता फांता भद भद करता मरकटवा बनकटे के भीतर घुसा। सोलो पोलो साले पोलो ले लिए, गिर गिटवा नारे तक खदेर आए बाबू, उसने हाँफते हुए कहा। शिव महतो ने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। बच्चा गहरी नींद में था। मरकटवा ने अपने बाप को देखा, इस तरह देखा, इस तरह तो उसने इस झाकड़ आदमी को कभी नहीं देखा था। फिर उसने औरत की ओर नजर उठाई। वह बाबू के दोहर से ठकी हुई थी। मरकटवा की समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले क्या करे। तभी शिव महतो ने बच्चे को ले जाकर नकटी दाई के चौरे पर रख दिया। मरकटवा ने सोचा, बाबू बच्चे को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, अब हम अभी जाते हैं गियनिया के ट्यूबवेल तक जा रहे हैं, शिव महतो ने अपने बेटे से कहा। मरकटवा ने सोचा बाबू खाना दाना के इंतजाम में जा रहे हैं। वह चुपचाप नकटी दाई के चौरे पर बच्चे की बगल में बैठ गया। उसने इतना छोटा बच्चा कभी नहीं देखा था, यह आदमी कैसे बनेगा वह सोचने लगा। लेकिन शिव महतो जल्दी से पेस्तर ही लौट आया। मरकटवा ने लाइट मारी तो देखा बाबू कंधे पर फरुहा है। वह थोड़ा चौंका, उसने भौहें सिकोड़ी। वह समझ नहीं पा रहा था कि बाबू फरहा काहे को लाए हैं। चोर बत्ती पकड़ना चाहा तो शिव महतो थोड़ी दूर पर बनी घनी झाड़ियों के बीच पैरों से सूखी पत्तियां टारते हुए जगह को जांच पर रहा था। मरकटवा चोर बत्ती लेकर उसके पास पहुंचा। यहाँ क्या कर रहे हो, उसने बाप से पूछा। जरा लाइट मारो तो, शिव महतो ने कहा। मरकटवा ने चोर बत्ती जलाई। शिव महतो ने जगह जांच पर के फरुहे पर एक खंती लगाई। ठीक है, कंकड़ पत्थर नहीं, उसने कहा। गढ़ा क्यों खन रहे हैं, मरकटवा ने पूछा। चुप रहो, लाइट बारे रहो, शिव महतो ने सूखी पत्तियां हटाकर खनना शुरू किया ठाए ठाए। क्या करोगे, मरकटवा ने पूछा। खाली करेंगे, खाली नहीं करेंगे तो टेट का बैना भी कमाएंगे, शिव महतो ने कहा। खाली करोगे माने बच्चे को दफन करोगे, वो भी जिंदा, मरकटवा ने चोर बत्ती बुझा दी। और कैसे करें, जंगल में सियार कुकुर को खाने के लिए छोड़ दें कि बिहाने से पुरुष दरोगा दुगार झांकने लगे कि नदी में बहा दें। बहा देंगे तो बैरिया घाट तक उतरा जाए आएगा, कहीं किसी की नजर पड़ गई फिर बात खुलेगी कि नहीं। और जौन बाबू साहेब आसिमुनिया से रतिया में लौर लाठी किए हो तब तक नहवाई फूफियाती रही, वे लोग बैठे रहेंगे। शिव महतो फरुहा थामे थामे अपने बेटे को समझाता रहा। लाइट बारो, जल्दी करना, उसने कहा। बाबू, मरकटवा बोला। अब क्या है बे, शिव महतो को खुनस चढ़ने लगी। बाबू ई बर्दाश्त से बाहर है, मरकटवा ने कहा। का बर्दाश्त से बाहर है, हैं? शिव गढ़े के बाहर निकल आया। ई तो हम नहीं होने देंगे, मरकटवा फिर बोला। हट जा मेरे आगे से, नहीं ठीक नहीं होगा, शिव ने कहा। कल तक जूझी धोने का सहूल नहीं था, चले हैं उपरोहित बनने। कुछ भी हो ई तो नहीं होगा, मरकटवा ने देवता से कहा। क्या नहीं होगा, शिव महतो कूद कर फिर गढ़े के बाहर निकला और उसने फरुहे से के बेंट से बेटे के पेट पर एक हुरपेटा मारा। मरकटवा पहले तो पेट पकड़कर वहीं बैठ गया, लेकिन तुरंत कूद कर उसने अपनी लाठी उठा ली। लेकिन इससे पहले कि वह चेते, शिव महतो ने अपना लोहबन्ना हुमच कर उसके ऊपर दे मारा। लोहबन्ना मरकटवा के बाएं कंधे पर पड़ा और उसका कंधा जैसे झूल कर अलग हो गया। मरकटवा ने सीकर उठाई और दौड़कर शिव के सिर पर दे मारा। शिव महतो के सिर से रक्त की धार फुहारे की तरह निकल पड़ी। उसने अपने हाथ से खोपड़ी टटोली तो लगा उसकी उंगली दरार में चली जाएगी, उसका पूरा हाथ खून से सन गया। उसने अपनी पगड़ी के लिए निगाह फिराई तो उसे याद आया कि इसमें तो बच्चे को लपेट रखा है। तब तक मरकटवा ने सीकर से फिर वार किया, उसने अपने बाप को संभालने नहीं दिया। उसने दोबारा तिबारा सीकर से उसके मुंह कंधे और छाती पर मारा, छाए छाए छाए। शिव महतो को लगा उसके पैरों के नीचे की धरती थरथरा रही है। वह हुहुआता हुआ उठा और उसने फरुहे से दौड़कर मरकटवा के पेट पर भरपूर वार किया। उसे लगा जैसे कोई चास जोती हुई हलवा जमीन में, फरुहा घप से भरपूर धंस गया। मरकटवा ने जोर का चित्कार किया और धड़ाम से जमीन पर ढह गया। शिव महतो लहर लेता हुआ थोड़ी दूर चला, उसने खून से सनी हुई लथपथ नजर उस औरत की ओर उठाई, फिर गर्दन मोड़कर उसे नकटी दाई के चौरे की ओर देखा। इस देखने की कोशिश में ही उसे खुमरी आई और वहीं मुंह के बल ढेर हो गया। भोर की पहली आहट पाते ही जैसे बनकटा चहचहा उठा। उस चहचहे से ही औरत की आंखें खुली, उसने देखा उसके ऊपर घने हरे पत्तों से लदी हुई बरगद की काली काली डाले हैं, उसमें लाल लाल गोदे और गोदों के इर्द गिर्द उड़ते दुरंगे हाड़े, कभी कभी दो हाड़े जुड़ जाते और तेजी से जमीन पर गिर पड़ते। औरत ने अपने हाथ पैर इधर उधर किए, उसने पाया कि वह दोहर से ढकी हुई है, जैसे उसकी याददाश्त वापस आ रही हो। कुछ कुछ उसी तरह उठी और चारों ओर देखने लगी। एकाएक उसे अपने बच्चे की याद आई, उसने अपने अगल बगल ताका, फिर इधर उधर, बच्चा कहीं नजर नहीं आया। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, वहाँ एक गहरा खोखला भर बचा था। तभी उसकी नजर उधर गई जहाँ मरकटवा चारों खाने चित लेटा था, उसकी पेट कंकटाई बासी हांडी की तरह खुला था। उसके पास ही दो सियार कुछ सोचते हुए से बैठे थे, उनमें से एक कभी कभी उठता मरकटवा के इर्द गिर्द चक्कर काटता, उसके खुले पेट के पास जाकर सूंघता और फिर लौटकर अपने साथी के पास बैठ जाता। वे ताड़ रहे थे कि आदमी जिंदा है या मर गया। जब सियार ने यही क्रम दोहराया तो डर के मारे औरत की सांसें घुटने लगी, वह किसी तरह संभल कर खड़ी हुई। उसे उठता हुआ देखकर सियार उसे खोलने लगे और फिर पास की झाड़ी में सरक गए। जब उसने नजर घुमाई तो देखा कि थोड़ी देर पर शिव महतो मुंह के बल पड़ा हुआ है। बच्चा मिन मिन आया तो उसने झटके से उधर ताका, उसने देखा कि नकटी दाई के चौरे पर वह रखा हुआ है और बेजान सा हिल रहा है। वह अफनाई उठी और सब कुछ भूल भाल कर चौरे तक गई। बच्चा अंगोछे में लिपटा हुआ था और कुछ पलों तक आंखें फाड़े उसे निहारती रही, अचंभे और डर और कमजोरी से थरथराती हुई। फिर अपनी रुलाई रोकने के लिए उसने अपना आंचल मुंह में ठूस लिया, लेकिन वह रो रही थी लगातार, न जाने किस सुख और आनंद या किस दुख और हताशा से। वह उधर देखने से अपने को रोक न पाई जिधर वे पड़े थे। उसने देखा कि दोनों सियार झाड़ी से फिर थोड़ा बाहर निकल आए हैं। उसे लगा कि उसके पास रोने का भी टाइम अब नहीं है। उसने बच्चे को संभाल कर उठाया, ठीक उसी तरह जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ था और उसने उसे गोदी में उठाया था। उसकी नजरें बच्चे से हट नहीं रही थी। भोर के उजाले से चकमक उसकी आंखें मुदी हुई थी। वह बार बार अपनी सूजी हुई पलकें खोलने की कोशिश कर रहा था और इस प्रयत्न में अपनी भौहें और माथा सिकोड़ रहा था। सूरज से यही उसकी पहली भिड़ंत थी। औरत चौरे पर बैठ गई। उसने जल्दी से अपना स्तन निकाला और बच्चे के मुंह में दे दिया। जैसे चुंबक से लोहा चिपक जाता है, उसी तरह बच्चा माँ के स्तन से चिपक गया। वह उसे चुपचाप देखती रही। जीवन के पहले श्रम से उसका मुंह धीरे धीरे लाल पड़ने लगा। वह थक जाता और बीच बीच में सुस्ताने के लिए सो जाता। वह उसके होठों को हल्के से छूती तो वह फिर होंठ चलाने लगता। फिर वह गहरी और निश्चिंत नींद में सो गया। तभी मुंह के बल पड़े सीओ महत के मुख से एक कराह निकली। वह बनकटे से बाहर आई, नदी के कछार में उतरी। उसने रास्ते के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई। उसकी जांघें दर्द से फटी जा रही थी और कमर जैसे मुंगरी से थूर दी गई। उसे लगा वह चल नहीं पाएगी। फिर भी उसने चलना स्वीकार किया। उसने बच्चे को कंधे से चिपकाया और इस असार संसार की ओर निकल गई।